सभा उपदेशक अध्याय 12 पद 1। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। रोचक बात है कि अधिकतर मन परिवर्तन युवा अवस्था में हुए हैं। आपने भी 7-8 निर्णय यीशु मसीह के लिए युवा अवस्था में किए होंगे, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण आदेश है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। सभा उपदेशक अध्याय 12 पद 1 में आगे लिखा है, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। वृद्धावस्था होने तक प्रभु की सेवा के लिए प्रतीक्षा ना करें कि अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे। अपना जीवन जवानी में ही दे, इससे पहले कि बुरे दिन आए और आप कहें जीवन में मजा नहीं है। हमारे पास यहां वृद्ध लोगों का सजीव चित्रण है। सभा उपदेशक अध्याय 12 पद 2। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद फिर घिर आए, जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है आप अधिक प्रकाशमान बल्ब घर में लगाते हैं। मुझे चश्मा लगाने का बोध तब हुआ जब पढ़ने के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ी। ज्यों ज्यों आयु बढ़ती जाती है त्यों त्यों प्रकाश कम होता प्रतीत होता है और आपको पढ़ने के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। आपकी आंखों की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है और उस प्रकाश के साथ उनका सिकुड़ना और फैलना अनुपात में नहीं हो पाता। इस कारण आपको अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। स्मरण रखें, सभा उपदेशक अध्याय 12 पद 3। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। जब आप वृद्ध अवस्था में लकवे के रोगी के समान हिलने लगोगे, आपके घुटने और पांव थर थराने लगेंगे, आप कप कपा कर चलने लगेंगे, जैसे आप अब लिखते हो फिर वैसे न लिख पाओगे, तब घर के पहरुए कांपेंगे। सभा उपदेशक अध्याय 12 पद 3 में आगे लिखा है, और बलवंत झुक जाएंगे, आपकी कमर झुक जाएगी, आपके नकली दांत लग जाएंगे। सभा उपदेशक अध्याय 12 पद 3 में आगे लिखा है, और पीसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। उन दिनों में नकली दांत नहीं होते थे। सभा उपदेशक अध्याय 12 पद 3 के अंत में लिखा है, और जरोखों में से देखने वालियां आंधी हो जाएंगी। फिर से आंखों के संदर्भ में, आंखें आपके शरीर की खिड़की है और आपकी आंखों की रोशनी कम होना आरंभ हो जाएगी। सभा उपदेशक अध्याय 12 पद 4। और सड़क की ओर की किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। आपके सुनने की और गाना गाने की क्षमता कम हो जाएगी। इस प्रकार के जीवन की अपेक्षा करना सचमुच में बहुत मजेदार बात है कि नहीं? भोर में पक्षी की आवाज की गूंज से आप उठ जाते हैं। आपको ज्यादा देर तक नींद की जरूरत नहीं पड़ती। सभा उपदेशक अध्याय 12 पद 5। फिर जो ऊंचा हो उसे भय खाया जाएगा। आपको इस प्रकार का डर लगने लगता है। सभा उपदेशक अध्याय 12 पद 5 में आगे लिखा है, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा। ओह, वहां एक टिड्डी है, मैं क्या करूंगा। एक बार मैं अपनी कलीसिया के एक भाई के साथ वृद्ध आश्रम में गया। वापस आते समय जब मैं सीढ़ियों से उतर रहा था, मैं 17वीं मंजिल पर था। एक वृद्ध स्त्री दौड़ती हुई मेरे पास आई और कहा, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। मैंने कहा, क्या बात है? उस स्त्री ने कहा, एक पुरुष मेरे कमरे में घुस आया है। मैंने उसको नहीं बुलाया, वो स्वयं मेरे कमरे में चला आया और वो अभी तक कमरे में है जिसे मैं बाहर नहीं निकाल सकती। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए उसे बाहर निकाल दूंगा। वो एक वृद्ध स्त्री थी, सो मैंने अंदाजा लगाया कि वो वृद्ध पुरुष होगा। मैंने उसे संभाला, इसलिए मैं उसके साथ कमरे में वापस गया और ऐसा प्रकट किया कि मैं अधिकारी हूं और उसे निकाल दूंगा। आप इस कमरे में बिन बुलाए क्या कर रहे हो? चारों तरफ देखकर मैंने कहा, मुझे तो यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसने कहा, वो उड़ता हुआ इस खिड़की से आया और यहां बर्तन धोने की जगह पर उतरा और पता है वो मुझे घूर रहा था। एक मक्खी या एक टिड्डा भी परेशानी का कारण हो सकती है। सभा उपदेशक अध्याय 12 पद 5 से लेकर 8 तक। क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास राहत टूट जाएगा। तब मिट्टी जो की त्यो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेशक कहता है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। आप जीवन के आखिरी पांडव में पहुंच गए हो, बस यही और कुछ नहीं। रोने वाले सड़क में हैं। जीवन क्या है? व्यर्थ है, व्यर्थ है। शरीर मिट्टी में मिल चुका है, आत्मा परमेश्वर के पास चली गई, सब कुछ समाप्त हो गया है और जीवन खालीपन है। ये परमेश्वर से रहित जीवन है और यदि आप परमेश्वर से रहित जीवन बिताएंगे तो आपकी दशा भी ऐसी होगी। आप इसे बच नहीं सकते। परमेश्वर के बिना जीवन का सही अर्थ मिलना असंभव है। परमेश्वर की सेवा से बढ़कर जीवन का कोई अर्थ नहीं है। व्यर्थ, व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। सभा उपदेशक अध्याय 12 पद 9 से लेकर 12 तक। उपदेशक जो बुद्धिमान था वो प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और पूछताछ करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। उपदेशक ने मन भावने शब्द खोजे और सीधाई से ये सच्ची बातें लिख दी। बुद्धिमानों के वचन पैने अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। स्कूल के दिनों में मैंने इस पद को अपने कमरे के दीवार पर लटका कर रखता था। सभा उपदेशक अध्याय 12 पद 13। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है, यही सब कुछ है। सभा उपदेशक अध्याय 12 पद 13 और 14 कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका परमेश्वर का भय मानकर जीवन जीना तथा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि एक दिन परमेश्वर सारे कामों का न्याय करेगा, गुप्त बातों का भी, चाहे वे भली हो या बुरी। आइए हम प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप परमेश्वर के नजदीक जीवन बिताएं, कि आप जीवन को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना आरंभ करें, कि आप इस सांसारिक जीवन को छोड़कर जीवन की परिपूर्णता को अपनी आत्मा में अनुभव करें। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा द्वारा उस परिपूर्ण और समृद्ध जीवन में ले जाए जो वो चाहता है कि आप मसीह यीशु में अनुभव करें। आप उस जीवन का अनुभव करें जिसके बारे में यीशु ने कहा कि वो आपके लिए बहुतायत का जीवन लाया है। प्रभु का हाथ आपके ऊपर हो और आप प्रेम में प्रभु के साथ चले, यीशु के नाम से।